एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के मतलब कई पहलुओं को छूती है। एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सब महसूस करते हैं पर शायद उसका असर पूरी तरह समझते नहीं।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सेंथिल मुल्लानाथन और एल्डर शफीर की बहुत ही जानी मानी किताब स्कैर्सिटी, व्हाई हैविंग टू लिटिल मीन्स सो मच। हिंदी में अगर इसका मतलब समझे तो कमी का मनोविज्ञान, जब थोड़ा होना ही बहुत कुछ बदल देता है, और ये थोड़ा होना किसी भी चीज का हो सकता है ना?
बिल्कुल, और यही बात इसे आज के समय में मतलब इतनी जरूरी बना देती है। सोचिए जरा, कभी लगता है समय कम है, कभी पैसा कम है, सेहत की चिंता है, यहां तक कि फोकस ध्यान लगाने की भी कमी।
हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम लगातार किसी न किसी चीज की कमी से जूझ रहे हैं। तो ये किताब बताती है कि ये कमी सिर्फ सिर्फ बाहर की हालत नहीं है।
अच्छा,
हाँ, ये हमारे दिमाग पर, हमारी सोच पर, हमारे फैसलों पर एक तरह से कब्जा कर लेती है।
मतलब ये सिर्फ बाहरी परिस्थिति नहीं, ये एक मानसिक अवस्था बन जाती है।
बिल्कुल, और ये हमें गरीबी से लेकर अपने टाइम मैनेजमेंट, यहाँ तक कि डाइटिंग जैसी निजी चीजों को भी एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करती है। ये उस पुरानी सोच को चुनौती देती है कि लोग खराब फैसले क्यों लेते हैं।
अच्छा, तो पहले इन कमाल के लेखकों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहले हैं सेंथिल मुल्लानाथन, ये हार्वर्ड में थे, अब शिकागो यूनिवर्सिटी में है। व्यवहार अर्थशास्त्री मतलब बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट हैं।
हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये भारतीय मूल के हैं और इनका काम मनोविज्ञान की मदद से आर्थिक समस्याओं को, खासकर गरीबी को समझना है। इसमें ये माहिर माने जाते हैं।
और इन्हें वो प्रतिष्ठित मैकआर्थर जीनियस ग्रांट भी मिला है, ये तो बहुत बड़ी बात है।
जी हाँ, वाकई ये उनकी अनोखी सोच का सम्मान है। और वो जे पैन, अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, उसके कोफाउंडर भी हैं। ये संस्था दुनिया भर में गरीबी कम करने के लिए मतलब सबूतों के आधार पर नीतियां बनाने पर काम करती है। उनका काम जमीनी हकीकत से काफी जुड़ा हुआ है।
और दूसरे लेखक हैं एल्डर शफीर, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में है, मनोविज्ञान और सार्वजनिक नीति के प्रोफेसर।
हाँ, ये एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है और इनकी खासियत ये है कि ये समझते हैं कि दबाव में या जब कुछ पक्का ना हो, अनिश्चितता हो, तब हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हम फैसले कैसे लेते हैं।
तो एक अर्थशास्त्री और एक मनोविज्ञानिक, कमाल का कॉम्बिनेशन है।
सही कहा, और यही इस किताब की जान है। एक तरफ मुल्लानाथन का अर्थशास्त्र, डेटा का विश्लेषण, और दूसरी तरफ शफीर के दिमाग के काम करने के तरीके की गहरी समझ। वो उस पारंपरिक मॉडल से आगे जाते हैं ना कि इंसान हमेशा सोच समझकर बेस्ट फैसला लेता है।
हाँ, वो रैशनल एक्टर वाला मॉडल।
बिल्कुल, ये बताते हैं कि जब किसी चीज की कमी होती है तो हमारे दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है।
तो किताब का मूल विचार क्या है, एकदम सरल शब्दों में अगर कहें तो?
मूल विचार ये है कि जब हमारे पास किसी जरूरी चीज की कमी होती है, पैसा हो, टाइम हो, कैलोरी हो, या यहाँ तक कि किसी का साथ, अकेलापन हो, तो हमारा दिमाग ना एक खास मोड में चला जाता है, एक खास तरीके से काम करने लगता है।
अच्छा,
इसी को लेखक कमी की मानसिकता या स्कैर्सिटी माइंडसेट कहते हैं। ये सिर्फ हमारी हालत नहीं रहती, ये हमारे सोचने का तरीका बन जाती है।
ठीक है, तो ये मानसिकता करती क्या है फिर, इसका असर क्या होता है?
देखिए, दो मुख्य असर होते हैं। पहला, ये हमारा सारा ध्यान खींच लेती है। जिस चीज की कमी है बस वही दिमाग में घूमती रहती है हर वक्त।
जैसे
जैसे पैसे कम हो तो हर चीज की कीमत पर ध्यान जाता है, डाइटिंग पर हो तो बस खाने का ही ख्याल आता है। लेखक इसे टनलिंग कहते हैं, टनलिंग। जैसे हम एक सुरंग में हो और बस सामने की चीज दिख रही हो, आसपास कुछ नहीं।
टनलिंग, ठीक है। और दूसरा असर?
दूसरा और शायद सबसे बड़ा असर है बैंडविड्थ टैक्स।
बैंडविड्थ टैक्स, ये क्या चीज़ है?
इसका मतलब है कि कमी की जो चिंता है, जो तनाव है, वो हमारी मानसिक क्षमता, हमारी बैंडविड्थ को खा जाता है। बैंडविड्थ मतलब सोचने समझने की ताकत, ध्यान देने की क्षमता, प्लानिंग करने की और खुद पर कंट्रोल रखने की शक्ति।
ओह, मतलब जैसे कंप्यूटर की रैम कम हो जाती है।
हाँ बिल्कुल, वैसा ही समझ लीजिए। ये कमी हमारे दिमाग पर एक तरह का टैक्स लगा देती है, हमारी दिमागी ताकत को कम कर देती है।
तो कमी हमें सिर्फ परेशानी नहीं करती है, हमें सोचने समझने में भी कमजोर बना देती है। ये तो बड़ी बात है।
हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि जो लोग कमी से जूझ रहे होते हैं, चाहे वो गरीब हों या बहुत व्यस्त लोग हों या डाइट करने वाले, वो अक्सर ऐसे फैसले लेते दिखते हैं जो उनकी मुश्किलों को शायद और बढ़ा देते हैं।
लेकिन किताब कहती है कि ये उनकी गलती नहीं है।
हाँ, किताब का तर्क यही है कि ये उनकी कोई व्यक्तिगत कमजोरी या बुद्धि की कमी नहीं है, बल्कि ये उस कमी की स्थिति का सीधा नतीजा है जिसने उनकी बैंडविड्थ कम कर दी है। ये पूरे नजरिए को ही बदल देता है।
चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आपने कहा पहला असर है फोकस और टनलिंग।
हाँ,
किताब इसे कैसे समझाती है?
किताब शुरू ही यहाँ से होती है कि कमी कैसे हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेती है। ये लगभग अपने आप होता है। पैसे कम हो तो हर चीज की कीमत ज्यादा लगने लगती है, हर खर्च बड़ा दिखता है।
और डाइटिंग वाला उदाहरण भी था।
हाँ, डाइटिंग पर हो तो जहाँ देखो खाना ही नजर आता है ना? उसके ख्याल दिमाग से जाते ही नहीं। एक तरह से ये कमी हमारे हमारे दिमाग के एजेंडा को हाईजैक कर लेती है।
लेकिन क्या इसका कोई फायदा भी है या ये सिर्फ नुकसान ही करती है? फोकस होना तो अच्छी बात भी हो सकती है।
बिल्कुल, लेखक एक फायदे की बात करते हैं, उसे वो फोकस डिविडेंड कहते हैं। सोचिए, जब एग्जाम की डेडलाइन बिल्कुल पास हो तो हम कितनी तेजी से और ध्यान लगाकर पढ़ते हैं,
हाँ वो तो है, रातों रात सिलेबस खत्म।
या जब महीने के आखिर में पैसे कम हो तो हम कितने हिसाब किताब से खर्च करते हैं। तो कमी हमें उस एक जरूरी चीज पर जबरदस्त फोकस करने में मदद करती है, ये उसका फायदा है।
हाँ ये तो अनुभव किया है, डेडलाइन का प्रेशर तो काम करवा ही देता है। लेकिन फिर ये टनलिंग का नुकसान क्या है, फोकस अगर ज्यादा हो जाए तो?
नुकसान ये है कि ये फोकस इतना इतना ज्यादा हो जाता है कि हम एक सुरंग में चले जाते हैं। हम उस फौरी जरूरत पर, उस अर्जेंट काम पर इतना ध्यान देते हैं कि आसपास की दूसरी जरूरी चीजों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं।
जैसे
कोई उदाहरण, जैसे पैसों की तंगी में कोई व्यक्ति सिर्फ आज का बिल भरने के लिए शायद बहुत ऊंची ब्याज दर वाला लोन ले ले, वो ये नहीं सोच पाता कि लंबे समय में इसका क्या असर होगा या कोई और बेहतर रास्ता है क्या। या एक बहुत व्यस्त मैनेजर है, मान लीजिए वो आज की मीटिंग्स और ईमेल में इतना उलझ जाता है कि टीम की भविष्य की प्लानिंग या किसी जूनियर को गाइड करना, ये सब जरूरी चीजें पीछे छूट जाती हैं।
किताब में फायर फाइटर्स का उदाहरण भी है शायद।
हाँ बिल्कुल, वे आग बुझाने पर पूरा ध्यान लगाते हैं जो बहुत जरूरी है, लेकिन इस टनलिंग में, इस जबरदस्त फोकस में, हो सकता है वे इमारत के ढहने के खतरे जैसे किसी और जरूरी संकेत को नजरअंदाज कर दें। तो फोकस जरूरी है, पर अंधा फोकस खतरनाक हो सकता है।
सही बात। अब आते हैं उस दूसरे बड़े असर पर, बैंडविड्थ टैक्स। आपने कहा ये किताब का दिल है, ये बैंडविड्थ क्या है, इसे थोड़ा और समझाएं।
हाँ, तो बैंडविड्थ है हमारी हमारी मानसिक कंप्यूटिंग पावर, हमारी सोचने की, समझने की, याद रखने की, ध्यान देने की, योजना बनाने की, और सबसे जरूरी अपनी इच्छाओं या भावनाओं पर, मतलब इम्पल्सिवनेस पर नियंत्रण रखने की क्षमता, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जिसे कहते हैं।
ठीक है, जैसे हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर और रैम।
बिल्कुल, आप एकदम सही समझे। और बैंडविड्थ टैक्स का मतलब है कि कमी की जो चिंता है, चाहे वो पैसे की हो, समय की या किसी और चीज की, वो हमारी इस मानसिक रैम और प्रोसेसिंग पावर को खा जाती है, कम कर देती है।
और इसका असर उन कामों पर भी पड़ता है जिनका उस कमी से सीधा लेना देना नहीं है।
जी हाँ बिल्कुल, यही इसकी सबसे चौंकाने वाली बात है। मान लीजिए आप पैसों को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में हैं, तो हो सकता है आप अपने बच्चों पर ज्यादा चिड़चिड़ापन दिखाएं, या गाड़ी चलाते वक्त छोटी छोटी गलतियां करें, या कोई नई स्किल सीखनी हो तो उसमें ज्यादा मुश्किल हो।
मतलब कमी हमें हर तरह से थोड़ा कम काबिल बना देती है उस वक्त के लिए।
प्रभावी रूप से, हाँ, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसका असर मापा जा सकता है।
मापा जा सकता है, क्या क्या इसका कोई सबूत है, कोई स्टडी?
हाँ, और बहुत मजबूत सबूत है। किताब में एक बहुत ही शानदार स्टडी का जिक्र है जो भारत में गन्ना किसानों पर की गई थी।
अच्छा, हमारे देश में?
जी, रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने फसल कटने से ठीक पहले, जब किसान अक्सर आर्थिक तंगी और तनाव में होते हैं, और फिर फसल कटने के कुछ समय बाद जब उनके पास पैसे आ जाते हैं और तनाव कम होता है, उन्हीं किसानों के कुछ दिमागी टेस्ट्स लिए, कॉग्निटिव टेस्ट्स।
और नतीजे क्या निकले? मुझे तो बड़ी उत्सुकता हो रही है।
नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्हीं किसानों के टेस्ट स्कोर्स में पैसे आने के बाद जब उनका तनाव कम हुआ तो औसतन 10 आईक्यू पॉइंट्स जितना उछाल देखा गया।
10 आईक्यू पॉइंट्स सिर्फ पैसों की तंगी दूर होने से?
हाँ, ये दिखाता है कि गरीबी या कमी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये सचमुच हमारी मानसिक क्षमता को, हमारी बैंडविड्थ को अस्थाई रूप से कम कर देती है। ये उनकी बुद्धिमत्ता में कोई स्थाई कमी नहीं थी, बल्कि उस वक्त के हालात का असर था।
वाह, ये तो सच में मतलब सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि गरीबी सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक दिमागी बोझ भी है, कॉग्निटिव लोड।
बिल्कुल।
और ये गरीबों के तथाकथित खराब फैसलों को बिल्कुल अलग रोशनी में दिखाता है। ये शायद उनकी क्षमता की कमी नहीं, बल्कि उनकी घटी हुई बैंडविड्थ का नतीजा हो सकता है।
बिल्कुल। और ऐसा सिर्फ गरीबी के साथ नहीं होता। किताब में न्यूजर्सी के एक मॉल में खरीदारों पर किए गए प्रयोग का भी जिक्र है।
उसमें क्या था?
उसमें कम आय वाले लोगों को जब एक महंगी कार मरम्मत, मान लीजिए $1500, के काल्पनिक सीन के बारे में सिर्फ सोचने को कहा गया, तो उसके तुरंत बाद लिए गए दिमागी टेस्ट में उनका प्रदर्शन काफी गिर गया।
सिर्फ सोचने भर से?
हाँ, सिर्फ उस पैसे की चिंता के बारे में सोचने भर से उनकी बैंडविड्थ पर टैक्स लग गया।
ये बैंडविड्थ टैक्स का आइडिया वाकई वाकई बहुत शक्तिशाली है, और ये हमें अगले मुद्दे पर लाता है कि कैसे कमी और ज्यादा कमी पैदा करती है, एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है।
हाँ, किताब बताती है कि कमी हमें अदूरदर्शी बनाती है, मतलब हम सिर्फ आज का सोचते हैं, कल का नहीं, मायोपिक हो जाते हैं। हम तत्काल राहत पर इतना फोकस करते हैं कि भविष्य के बारे में सोचना एक तरह से बंद कर देते हैं। हम भविष्य से उधार लेने लगते हैं।
भविष्य से उधार? कैसे?
जैसे समय कम हो तो हम जरूरी लेकिन आज जरूरी न लगने वाले काम टाल देते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना या कोई लंबी अवधि की प्लानिंग करना। इससे क्या होता है, भविष्य में समय की और कमी हो जाती है।
और पैसे के मामले में?
पैसे की तंगी में हम शायद ऊंची ब्याज वाले लोन ले लें या क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल कर लें। ये तुरंत राहत तो देते हैं, पर भविष्य में ज्यादा बड़ा बोझ बन जाते हैं।
और यहीं से बनता है वो कमी का जाल, स्कॉसिटी ट्रैप, है ना?
बिल्कुल। इसे ऐसे समझें, टनलिंग, जिससे हम बेहतर दूर के विकल्प नहीं देख पाते, प्लस घटी हुई बैंडविड्थ, जिससे हम सोच समझकर कंट्रोल वाले फैसले नहीं ले पाते, प्लस भविष्य से उधार लेना।
ये सब मिलकर एक ऐसा चक्कर बना देते हैं जिसमें कमी और ज्यादा कमी को जन्म देती है, और फिर उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है।
हाँ, लेखक यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज की बात करते हैं, स्लैक, मतलब गुंजाइश या बफर।
स्लैक, जैसे रस्सी में ढील होती है।
हाँ, कुछ वैसा ही। जब हमारे पास थोड़ा अतिरिक्त समय, पैसा या ऊर्जा नहीं होती, मतलब बिल्कुल नाप तौल कर चल रहा होता है सब कुछ, तो हम लगातार चीजों को संभालने में, एक के बाद एक आने वाली मुसीबतों से जूझने में फंसे रहते हैं।
इसे वो जुगलबंदी कहते हैं शायद।
हाँ, जगलिंग। और ये जुगलबंदी अपने आप में बहुत थकाने वाली होती है और हमारी बची खुची बैंडविड्थ भी खा जाती है।
इसका कोई सीधा सा उदाहरण सोचें तो, मान लीजिए किसी की कार खराब हो गई। अब जिसके पास थोड़ी बचत है, मतलब स्लैक है, वो उसे आसानी से ठीक करा लेगा।
हाँ, उसके लिए एक छोटी सी परेशानी है।
लेकिन जिसके पास ये स्लैक नहीं है, उसे शायद उधार लेना पड़े, या वो काम पर ना जा पाए, या किराया ना चुका पाए। मतलब एक छोटी सी समस्या उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाती है।
बिल्कुल। और इससे तनाव और बढ़ता है, बैंडविड्थ और कम होती है। स्लैक का ना होना छोटी समस्याओं को बड़ी आपदाओं में बदल सकता है।
तो फिर इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है, क्या समाधान है, किताब क्या कहती है?
किताब का तीसरा हिस्सा इसी पर फोकस करता है, कमी को ध्यान में रखकर समाधान डिजाइन करना, डिजाइनिंग फॉर स्केयरसिटी। किताब कहती है कि हमें सिर्फ लोगों को बेहतर बनो या ज्यादा मेहनत करो कहने से बात नहीं बनेगी।
तो क्या करना होगा?
हमें ऐसे सिस्टम और नीतियां बनानी होंगी जो इस घटी हुई बैंडविड्थ की हकीकत को समझें, उसे ध्यान में रखें।
कैसे सिस्टम, मतलब?
ऐसे तरीके जो निर्णय लेने को आसान बनाएं। सोचिए अगर सरकारी योजनाओं के फॉर्म इतने मुश्किल हों या बैंक लोन की प्रक्रिया इतनी लंबी और उलझी हुई हो, तो जिस व्यक्ति की बैंडविड्थ पहले से ही कम है, उसके लिए इन्हें पूरा करना कितना मुश्किल होगा।
हाँ, वो तो शायद छोड़ ही देगा कोशिश करना।
बिल्कुल। तो समाधान है प्रक्रियाओं को सरल बनाना, ऑटोमेशन का इस्तेमाल करना ताकि दिमागी बोझ कम हो, रिमाइंडर भेजना और सही समय पर मदद देना, जब लोगों के पास उसे समझने और इस्तेमाल करने की बैंडविड्थ हो।
ये बात तो काम करने की जगहों पर भी लागू होती होगी ना, ऑफिस में?
हाँ, जरूर। लगातार टाइट डेडलाइन और बजट की कमी, ये कर्मचारियों को सिर्फ शॉर्ट टर्म लक्ष्यों पर टनल करवा सकती है। इससे लंबी अवधि की सोच, कुछ नया सीखने या इनोवेशन करने की गुंजाइश वो खत्म हो जाती है।
तो मैनेजरों को भी ये समझना होगा कि लगातार दबाव बनाए रखना शायद हमेशा बेस्ट तरीका ना हो।
सही कहा। और सबसे जरूरी बात जो किताब कहती है वो है स्लैक बनाना, बिल्डिंग स्लैक।
वही गुंजाइश वाली बात।
हाँ, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर थोड़ी बचत हो, या थोड़ा खाली समय हो, या फिर संगठनों और सिस्टम में थोड़ी अतिरिक्त क्षमता या बफर हो, ये स्लैक कोई लग्जरी या बर्बादी नहीं है,
ये जरूरत है।
हाँ, ये एक जरूरत है स्थिरता के लिए, लचीलेपन के लिए, और अच्छे फैसलों के लिए थोड़ी गुंजाइश होनी ही चाहिए। यह हमें अचानक आने वाले झटकों से बचाता है और सोचने समझने की थोड़ी मोहलत देता है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य संदेश या थीम क्या उभर कर आते हैं? क्या है वो बड़ी बातें जो हमें याद रखनी चाहिए?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे गहरा संदेश तो यही है कि कमी एक सार्वभौमिक मनोविज्ञान है। ये सिर्फ गरीबों या किसी एक समूह की कहानी नहीं है।
हाँ, ये हम सब पर लागू होती है।
कमी का असर एक जैसा होता है। भारत में सोचें, परीक्षा का दबाव, काम और घर के बीच संतुलन, महीने के आखिर में बजट संभालना, ये सब कमी के अनुभव हैं जिनसे हम सब गुजरते हैं, ना?
सही बात है।
दूसरा पॉइंट?
दूसरा बैंडविड्थ टैक्स का वो क्रांतिकारी विचार। ये समझना कि कमी हमारी मानसिक क्षमता को सचमुच कम कर देती है, ये हमारे फैसलों को देखने का नजरिया ही बदल देता है।
हम अक्सर लोगों को उनके खराब फैसलों के लिए जज करते हैं।
हाँ, लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि शायद उनकी क्षमता ही उस वक्त कम हो गई थी। तनाव कैसे हमारी पढ़ाई, हमारे रिश्तों, हमारी सेहत की आदतों पर असर डालता है, ये सब बैंडविड्थ टैक्स का खेल हो सकता है।
तीसरा था टनलिंग, यानी फोकस का फायदा और अंधेपन का नुकसान।
हाँ, ये हमें सिखाता है कि किसी चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करने के अपने खतरे हैं। हम जरूरी काम निपटाने में तो माहिर हो सकते हैं, पर शायद जीवन के दूसरे जरूरी पहलुओं, सेहत, रिश्ते, भविष्य की योजना को नजरअंदाज कर दें।
जैसे त्योहार की तैयारी में जबरदस्त फोकस अच्छा है, पर अगर उसमें सेहत भूल जाएं तो, या नौकरी के टारगेट पूरे करना अहम है, पर क्या हम बड़े मौकों से चूक रहे हैं?
बिल्कुल। चौथा पॉइंट है कमी का जाल, स्कार्सिटी ट्रैप, और इससे निकलना क्यों मुश्किल है। वो टनलिंग, बैंडविड्थ टैक्स और भविष्य से उधार लेने का घातक कॉम्बिनेशन कैसे हमें एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा देता है जहां से निकलना मुश्किल लगता है।
भारत में हम इसे कर्ज के जाल में फंसे किसानों में देख सकते हैं, या लगातार समय की कमी से जूझते और बर्नआउट महसूस करते शहरी पेशेवरों में।
सही। और पांचवा, स्लैक, गुंजाइश और बेहतर डिजाइन का महत्व। समाधान सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा शक्ति में नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाने में है जो हमारी मानसिक सीमाओं को समझें।
बफर या गुंजाइश बनाना बर्बादी नहीं, जरूरत है। प्रक्रियाओं को आसान बनाना होगा, चाहे वो बैंक का फॉर्म हो या सरकारी मदद। हमें बैंडविड्थ फ्रेंडली सिस्टम चाहिए।
बिल्कुल। तो अब सवाल उठता है कि इन सब विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें तो नहीं है।
हाँ, इनके ठोस व्यवहारिक पहलू भी होने चाहिए, जैसे निजी वित्त प्रबंधन में।
हाँ बिल्कुल। सिर्फ और अनुशासित बनूंगा कहने से ज्यादा असरदार है ऐसे सिस्टम बनाना जो अनुशासन की जरूरत कम कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि वित्तीय तनाव बैंडविड्थ घटाता है।
तो क्या कर सकते हैं? ऑटोमेटिक बचत।
हाँ, सैलरी आते ही बचत के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करना एक तरीका है। बजटिंग ऐप्स इस्तेमाल करना जो हिसाब आसान कर दें, और सबसे अहम, एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाना।
वो स्लैक?
हाँ, वो स्लैक जो अप्रत्याशित खर्चों के समय आपको भारी बैंडविड्थ टैक्स से बचाएगा।
और समय मैनेजमेंट में?
उसमें भी यही बात लागू होती है। अपने दिन को ठसाठस भरने से बचें। लगातार मीटिंग्स और कामों की लिस्ट समय की कमी पैदा करती है, जिससे टनलिंग होती है। जानबूझकर कामों के बीच थोड़ा बफर टाइम रखें,
ताकि सांस लेने की फुर्सत मिले।
हाँ, और जो काम जरूरी हैं पर तत्काल नहीं लगते, जैसे मेडिकल चेकअप, इंश्योरेंस रिन्यूअल, दोस्तों से मिलना, उनके लिए रिमाइंडर लगाएं, ताकि वे टनल विजन में खो ना जाएं।
और प्लानिंग कब करें?
प्लानिंग तब करें जब दिमाग शांत हो, जैसे वीकेंड पर, न कि सोमवार सुबह की अफरा तफरी में।
स्वास्थ्य और डाइटिंग में भी ये सोच काम आ सकती है?
जरूर। बहुत सख्त डाइट अक्सर इसलिए फेल होती है क्योंकि वो खाने के बारे में लगातार सोचने, टनलिंग पर मजबूर करती है और हमारी इच्छा शक्ति, बैंडविड्थ, खत्म कर देती है। बेहतर है छोटे टिकाऊ बदलाव करें।
जैसे
वीकेंड पर जब ज्यादा बैंडविड्थ हो, तब हफ्ते भर के खाने की थोड़ी प्लानिंग कर लें ताकि रोज रोज सोचना ना पड़े। इससे रोज का दिमागी बोझ कम होगा।
और शायद सबसे बड़ा एप्लीकेशन है दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करना।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब हम किसी सहकर्मी को डेडलाइन के प्रेशर में गलतियां करते देखें, या किसी रिश्तेदार को पैसे की तंगी में अजीब से फैसले लेते देखें, या किसी को सरकारी दफ्तर में उलझा हुआ पाएं,
तो याद रखें कि ये शायद उनकी लापरवाही या नाकाबिलियत नहीं बल्कि बैंडविड्थ टैक्स का असर हो सकता है।
बिल्कुल, ये समझ हमारे रिश्तों को बेहतर बना सकती है, हमें ज्यादा मददगार बना सकती है।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही? कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा मतलब असर कर गई?
मेरे लिए तो बैंडविड्थ टैक्स का आइडिया ही सबसे ज्यादा प्रभावी रहा। ये समझना कि बाहरी परिस्थितियां कैसे हमारी दिमागी क्षमता को सीधे तौर पर कम कर सकती हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये हमें खुद को और दूसरों को समझने का एक नया फ्रेमवर्क देता है। और वो स्लैक या गुंजाइश की जरूरत वाली बात?
हाँ, वो भी बहुत जरूरी है।
आज की दुनिया में जहाँ हर कोई बस एफिशिएंसी एफिशिएंसी करता है, ये एक जरूरी रिमाइंडर है कि थोड़ी ढील थोड़ी गुंजाइश भी जरूरी है।
और मेरे लिए ये समझना कि एक कमी कैसे हमारे दिमाग पे कब्जा कर लेती है और हमें टनल विजन में डाल देती है, ये बताता है कि क्यों मुश्किल हालात में फंसे लोग अक्सर ऐसे फैसले लेते हैं जो बाहर से देखने पर शायद समझ ना आए या तर्कहीन लगे।
हाँ, ये सहानुभूति जगाता है।
हाँ, और ये हमें सिस्टम लेवल समाधानों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव पर जोर देने की बजाय।
तो सुनने वालों के लिए हम एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल। सोचने के लिए एक सवाल, अपनी जिंदगी में देखिए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ कमी, चाहे वो समय की हो, पैसे की या किसी और चीज की, आप पर एक छिपा हुआ बैंडविड्थ टैक्स लगा रही हो सकती है।
कहाँ आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, शायद इसलिए कि आपकी मानसिक ऊर्जा कहीं और खर्च हो रही है।
और उस स्थिति में थोड़ा स्लैक या गुंजाइश बनाने के लिए आप कौन सा एक छोटा ठोस कदम उठा सकते हैं आज ही?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।